नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। हमारे पास सिर्फ एक वाक्य है, एक संकल्प, और हमारा मिशन है ये पता लगाना कि ये एक लाइन हमारे सोचने, काम करने और मतलब दूसरों से व्यवहार करने के तरीकों को कैसे पूरी तरह बदल सकती है। ये वाक्य पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित हमारा युग निर्माण सत्संकल्प से लिया गया है। ये उसका पहला संकल्प है। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इस वाक्य में दो बहुत कह सकते हैं भाली भरकम शब्द हैं, सर्वव्यापी और न्यायकारी। सुनने में तो ये किसी धर्म ग्रंथ के शब्द लगते हैं, पर सत्संकल्प में इनका मतलब क्या बताया गया है?
देखिए, यहाँ सर्वव्यापी का मतलब सिर्फ ये मानना नहीं है कि ईश्वर हर जगह है। पूज्य गुरुदेव इसे एक शुद्ध दृष्टि कहते हैं। वो एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे एक विशाल झरने से हजारों लाखों छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं, पर उन सबका स्रोत तो एक ही होता है ना? उसी तरह इस दुनिया के सारे जीव वो एक ही परमात्मा से निकले हैं और आखिर में उसी में मिल जाएंगे। जब ये समझ में आ जाता है कि हम सब एक ही स्रोत का हिस्सा है, तो दृष्टि ही बदल जाती है।
अच्छा, तो मतलब पहला बड़ा आइडिया ये है कि आस्तिक होने का मतलब सिर्फ मानना नहीं है, बल्कि ये महसूस करना है कि आप हर पल एक अदृश्य कैमरे की निगरानी में हैं, और ये कैमरा सिर्फ आपके कामों को नहीं, आपके विचारों को भी रिकॉर्ड कर रहा है। ये सोच ही अपने आप में बहुत बड़ी है।
बिल्कुल, और इसी समझ को आस्तिकता कहा गया है। ये विश्वास कि हम उस महान ईश्वर के अंश हैं, हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारे अंदर भी महानता और शक्ति का भंडार छिपा है। हमें वो प्रतिभा दी गई है जिससे हम न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि अपने परिवार और समाज को भी बेहतर बना सकते हैं।
वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब ईश्वर ने हमें काबिलियत देकर एक तरह के जैसे कोई एस्केप रूम होता है उसमें डाल दिया है, जहां एक तरफ लालच का दरवाजा है और दूसरी तरफ कर्तव्य का, और हमें खुद चुनना है कि किस दरवाजे से बाहर निकलना है।
आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। सत्संकल्प में इसी को बुद्धिमत्ता की परीक्षा कहा गया है। पूज्य गुरुदेव इसकी एक तस्वीर खींचते हैं। कल्पना कीजिए कि एक तरफ शैतान खड़ा है, जिसके हाथों में पाप, लालच, अहंकार और वासना जैसे आकर्षक हथियार हैं, और दूसरी तरफ भगवान है, जो धर्म, कर्तव्य और संयम की मुस्कान के साथ शांति से खड़े हैं।
ये जो शैतान और भगवान की तस्वीर है, ये तो लगभग हर संस्कृति और कहानी में मिलती है। एक चुनाव अच्छाई और बुराई के बीच, तो ये सत्संकल्प कह रहा है कि ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों की हकीकत है।
बिल्कुल,
कैसे ट्रैफिक में किसी को गाली देना है या नहीं, या ऑफिस में किसी की मेहनत का क्रेडिट लेना है या नहीं।
बिल्कुल, वही यही हमारे जीवन की असली परीक्षा है, जिसे ईश्वरीय लीला कहा गया है। सत्संकल्प कहता है कि जो इस परीक्षा में पास हो जाता है, उसे दैवत्व और जीवन मुक्ति जैसे पुरस्कार मिलते हैं, और जो फेल हो जाता है, उसे एक अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की तरह 84 लाख योनियों के चक्र में फिर से सीखना पड़ता है। ये जीवन का सबसे बड़ा दाव है, जिसमें हमारी बुद्धिमत्ता ही हमारी पूंजी है।
ये सुन के थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। हम बचपन से सीखते आए हैं कि जो पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, वही आस्तिक है, लेकिन ये सत्संकल्प तो उस पूरी परिभाषा को ही पलट रहा है। इसका मतलब कोई नास्तिक जो ईमानदार और दयालु है, वो उस पूजा करने वाले से बेहतर है जो मन में बुरे ख्याल रखता है।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और सत्संकल्प इसका जवाब बहुत साफ देता है। सच्ची आस्तिकता की पहचान तिलक माला या पूजा पाठ जैसे बाहरी चिन्हों से नहीं होती। सच्ची आस्तिकता का मतलब है ईश्वर पर ऐसा अटूट विश्वास कि आप उसकी मौजूदगी को हर पल महसूस करें, जिसे ये पक्का यकीन है कि ईश्वर हर जगह है और मेरे मन के हर विचार को जानता है। वो इंसान न तो शरीर से कोई गलत काम करेगा और न ही मन में कोई गंदगी आने देगा। सत्संकल्प की एक लाइन बहुत तीखी है, आस्तिक कुकर्मी हो ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, तो उसकी पूजा पाठ, उसका धर्म सब एक दिखावा या धोखा मात्र है।
ये तो बहुत सीधी और कड़ी बात है। इसका मतलब हमारी आस्तिकता हमारे कर्मों में दिखनी चाहिए, रीति रिवाजों में नहीं। लेकिन यहीं पर एक और सवाल खड़ा होता है। अगर ईश्वर सब देख रहा है और न्यायकारी है, तो फिर लोग मंदिरों में जाकर प्रार्थना या भेंट क्यों चढ़ाते हैं? क्या उसके न्याय से बचने का या कोई खास फायदा पाने का ये कोई तरीका है?
यहाँ एक बहुत आकर्षक बात सामने आती है। पूज्य गुरुदेव साफ कहते हैं कि ईश्वर एक न्यायनिष्ठ जज की तरह है, जो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वो अपने ही बनाए नियमों से बंधा है। उसे पूजा या स्तुति करके उसके नियमों से डिगाया नहीं जा सकता।
तो मतलब ईश्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स कोड जैसा है। नियम सबके लिए लिखे हुए हैं और वो खुद उन नियमों को बदल नहीं सकता। वो सिस्टम का एडमिन है, कोई ऐसा यूजर नहीं जिसे विशेषाधिकार मिल सके।
बहुत सही एनालॉजी है। सोचिए, अगर ईश्वर किसी की चापलूसी या भेंट से खुश होकर अपने नियम बदल देता तो उसे न्यायकारी कौन कहता? तब तो वो खुशामदी या रिश्वतखोर कहलाता। सत्संकल्प कहता है कि कर्म का फल ईश्वरीय विधान का अटूट हिस्सा है।
यानी कर्म और उसका रिजल्ट, ये एक तरह का पैकेज डील है।
आप सिर्फ एक को चुनकर दूसरे को नहीं छोड़ सकते।
एक्शन और कॉन्सिक्वेंस हमेशा साथ आते हैं।
बिल्कुल, इससे कोई बच नहीं सकता।
एक मिनट, अगर ईश्वर इतना न्यायप्रिय है और किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, तो फिर दुनिया में इतनी नाइंसाफी क्यों दिखती है? कोई जन्म से अमीर है, कोई गरीब, कोई स्वस्थ है, कोई बीमार, ये सब देखकर तो यही लगता है कि सिस्टम में कोई गड़बड़ है। ये सत्संकल्प इस मुश्किल सवाल का क्या जवाब देता है?
चाहिए, ये रौद्र रूप असुरता और दुष्टता का दमन करता है, उसे नष्ट करता है।
रौद्र रूप? इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि न्याय हमेशा कोमल नहीं होता। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अस्पतालों में कष्ट झेलते रोगी, कारावास में पड़े कैदी या जीवन में दूसरी तरह की तकलीफें झेलते लोग, ये सब ईश्वरीय दंड व्यवस्था के ही अलग अलग रूप हैं। जैसे एक ईमानदार जज को अपने प्रियजन को भी उसके अपराध के लिए दंड देना पड़ता है, वैसे ही ईश्वर भक्त या अभक्त का भेद किए बिना सिर्फ कर्मों के अनुसार फल देता है। ये सोचना कि हम गलत काम करते रहेंगे और ईश्वर हम पर कृपा बरसाएगा, ये एक बहुत बड़ी भूल है।
यह न्याय की एक बहुत ही कठोर लेकिन निष्पक्ष तस्वीर है। इसे मानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो फिर इन सब का मतलब क्या है? अगर हम पूजा पाठ से ईश्वर से कोई पक्षपात नहीं करवा सकते, तो फिर उपासना या प्रार्थना का असली उद्देश्य क्या है? लोग इतनी भक्ति क्यों करते हैं?
ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। सत्संकल्प हमें समझाता है कि उपासना का उद्देश्य ईश्वर को बदलना नहीं, बल्कि
खुद को बदलना है।
खुद को बदलना है, ये ईश्वर से कोई शॉर्टकट या अनुचित लाभ पाने के लिए नहीं है।
तो प्रार्थना कोई चीट कोड नहीं है, बल्कि अपने ही कैरेक्टर को अपग्रेड करने का एक टूल है।
बिल्कुल सही कहा आपने। उपासना का सही उद्देश्य ये प्रार्थना करना है कि हे ईश्वर, आप हमें अपनी प्रसन्नता के प्रमाण के रूप में अच्छी भावनाएं दें, हमें अच्छे कामों में लगे रहने की प्रेरणा, हिम्मत और साधन प्रदान करें, और सबसे महत्वपूर्ण, जब जीवन में डर या लालच का मुश्किल समय आए, तब भी हमें सही रास्ते से ना भटकने की दृढ़ता दें। यही ईश्वर की कृपा का सबसे बड़ा और सच्चा चिन्ह है, कोई भौतिक लाभ नहीं।
अच्छा, मतलब कृपा का असली अर्थ बाहरी सफलता नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति है। तो फिर सच्ची भक्ति हमारे व्यवहार में कैसे दिखनी चाहिए?
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो भक्ति का सीधा साधा अर्थ है प्रेम। जो प्रेमी है वही भक्त है। जिसके मन में सच्ची भक्ति होगी, उसके व्यवहार से प्रेम की धारा अपने आप बहने लगेगी।
प्रेम? किसके प्रति प्रेम? हर किसी के प्रति।
वो व्यक्ति चींटी से लेकर हाथी तक हर मनुष्य में, हर जीव में अपने प्रियतम ईश्वर को ही देखेगा। क्योंकि हमने शुरू में ही बात की थी कि सब उसी एक स्रोत से निकले हैं, और जब कोई हर किसी में ईश्वर को देखने लगता है तो उसका व्यवहार सबके साथ उदारता, अपनेपन और सेवा से भर जाता है। सत्संकल्प के अनुसार यही असली ईश्वर दर्शन है। मंदिर में मूर्ति देखने से भी बड़ा दर्शन ये है कि जब आप अपनी ज्ञान की दृष्टि से हर जीव में परमात्मा को देख लें। जिसने ये देख लिया, समझना चाहिए कि उसे ईश्वर दर्शन का सच्चा लाभ मिल गया है।
तो आज के इस गेली पड़ताल का सार ये है कि आस्तिकता कोई रीति रिवाज नहीं, बल्कि एक 24/7 की जागरूकता है। ये हमारे हर काम और हर सोच में झलकती है। ईश्वर का न्याय एक निष्पक्ष सिस्टम की तरह है, जो कर्म पर आधारित है, पक्षपात पर नहीं। उपासना का लक्ष्य बाहरी चीजें पाना नहीं, बल्कि सही रास्ते पर टिके रहने की आंतरिक शक्ति पाना है। और सच्ची भक्ति आखिर में सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सेवा में ही प्रकट होती है।
और जाते जाते एक विचार, सत्संकल्प में जीवन को बुद्धिमत्ता की एक परीक्षा बताया गया है। अगर हमारे हर दिन के छोटे बड़े चुनाव कर्तव्य और लालच के बीच, अहंकार और प्रेम के बीच, सेवा और स्वार्थ के बीच ही इस परीक्षा के प्रश्न हैं, तो आज दिन भर में दिए गए हमारे उत्तर हमारे अंतिम परिणाम के बारे में क्या बताते हैं?